पृष्ठ संख्या 121। वह सब जानते हुए भी मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, लीलाएं करते हैं, जिससे लोक मर्यादा भंग न हो, जिससे मानवीय संबंधों का लोक आदर्श बना रहे। इसीलिए रावण के विनाश में वह सीता के कारण उन्मुख नहीं होते। या तो सिर्फ लीला है जो जनसाधारण के मस्तिष्क में राम के निर्णयों और पूर्व निश्चित कार्यक्रमों को स्वाभाविक बनाती है, क्योंकि राम उसी ढंग से उसी स्वभावजन्य वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में अपना मिशन पूरा करते हैं, जिससे वह चमत्कार न लगे, जिससे वह एक वीर का मर्यादायुक्त नैतिक कर्म ही दिखे। इसीलिए वह बाल क्रीडाएं भी करते हैं, विश्वामित्र के आदेशों का चुपचाप पालन भी करते हैं। इसीलिए वह सेनाएं भी इकट्ठी करते हैं, जटायु का पितृवत श्राद्ध भी करते हैं। इसीलिए वह लक्ष्मण से सीता के विरह की भी बात करते हैं और शक्ति लगने पर उनके लिए घोर विलाप भी करते हैं, नहीं तो वह कुछ भी कर सकते थे। वह सर्व अंतर्यामी, घट घट वासी, शरणदाता प्रभु हैं। गोस्वामी जी बार बार इसकी याद दिलाते हैं, कभी चूकते नहीं। फिर भी राम से उन्होंने कुछ भी वैसा नहीं करवाया जो ईसा के चरित्र की तरह चमत्कार पूर्ण हो। राम सब कुछ इस ढंग से करते हैं कि लोक में साधारण जन भी वैसा कर सकें। उनका किया हुआ कार्य अद्वितीय होते हुए भी असंभव और जादुई या रहस्यमय ना लगे। यही तुलसी के राम की अद्वितीयता और महानता है। सब कुछ जानते हुए, पूर्व निश्चित होते हुए भी वह उसे क्रियात्मक स्तर पर साधारण जन की शैली में ही करते हैं। लेकिन चूंकि वह सब कुछ जानते भी हैं, इसीलिए उनके मन में शंका नहीं है। एक तटस्थ और सुख दुख रहित निर्णय है। इसीलिए वह सीता के लिए रावण के विनाश में तत्पर नहीं होते। ब्रैकेट में गो की लोक भूमि पर उनका कर्म ऐसा ही लगता है, ब्रैकेट बंद। बल्कि रावण का विनाश तो पूर्व नियोजित है और सीता तो मात्र निमित्त बनती हैं। राम इसे भी जानते हैं। तुलसी के राम और वाल्मीकि के राम तथा निराला के राम में यही अंतर है। निराला के राम इन अर्थों में वाल्मीकि के राम के अधिक निकट लगते हैं, क्योंकि रावण के विनाश की मुख्य प्रेरणा इन दोनों जगहों पर सीता ही हैं, जबकि रामचरितमानस में सीता तो मात्र निमित्त हैं। रावण का विनाश तो पूर्व निश्चित है, कारण कि वह धर्म विनाशक है। ऋषियों से रक्तदान लेता है, अत्याचारों से सारे आर्यावर्त को त्रस्त किए हुए है। यहाँ तो राम का अवतार ही विनाशाय चा दुष्कृताम हुआ है। इस अर्थ में राम की शक्ति पूजा में अगर सिर्फ प्रत्यक्ष अर्थ ही रचयिता का उद्देश्य है, तो फिर वह इस इतिवृत्ति को किसी नए अर्थ से प्रकाशित करके नित नूतन नहीं करती, बल्कि और पीछे ले जाती है। फिर तो उत्तराखंड की राम कक्षा में निराला सिर्फ इतना ही जोड़ते हैं कि राम ने शक्ति की भी आराधना पृष्ठ संख्या 122 की। जैसे कि तुलसी ने कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो न सपने हो मोहि न भावा, डॉट डॉट पूर्व विराम। बंगाल में तो कृतिवास ने माँ दुर्गा की प्रतिष्ठा को उनकी पूजा राम से कराकर और मजबूत किया। लेकिन क्या निराला ने भी यह समझकर राम से शक्ति की पूजा करवाई कि उत्तर भारत में, जहाँ शक्ति की उपासना लगभग नगण्य है, लोग उनकी कविता पढ़कर उसकी पूजा करने लगेंगे? ऐसा सोचना भी निराला के संबंध में मूर्खतापूर्ण है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि यदि राम की शक्ति पूजा में निराला ने कोई दूसरा आधुनिक निजी या सामाजिक अर्थ प्रतिष्ठित नहीं किया, तो यह कविता मात्र कथा का पिष्ट पेषण है। और विशंभर मानो जो कहते हैं कि यह कृतिवास के बंगला रामायण की नकल है, वही ठीक है, क्योंकि फिर तो यह कविता राम के चरित्र को आगे क्या बढ़ाती है? तुलसी के राम की व्यापक और बड़ी भूमिका से भी पीछे उसे दूर अतीत में ढकेल देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, और यही बात विशंभर मानो जैसे गूढ़ मगज लोगों की समझ में कभी नहीं आई। इसे मात्र अपने इतिवृत्तात्मक अर्थ में ही प्रतिष्ठित मान लेने के कारण उन्हें लगा कि यह कृतिवास की नकल है, क्योंकि अगर यह कविता मात्र कथा की पुनरावृत्ति है तो इसमें कोई भी नयापन कैसे लगेगा, और फिर यह कृतिवास रामायण से अलग कैसे होगी। उपर्युक्त इस सारी व्याख्या और तर्क वितर्क का उद्देश्य यही बताना है कि राम की शक्ति पूजा में प्रत्यक्ष अर्थ या मात्र इतिवृत्त कथन निराला का अभिप्रेत नहीं है, कहीं से भी नहीं है। यही नहीं, परंपरा का सफल निर्वाह भी निराला का उद्देश्य पूर्णतया नहीं मालूम पड़ता। अगर ऐसा है तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि तब इस रचना कोई विशेष महत्व तो नहीं होगा। फिर सवाल यह है कि वह कौन सा नया अर्थ प्रकाश है जिससे यह कविता उद्भासित, किसी नए अर्थ संधान के द्वारा इसके महत्व का नया द्वार खुलना संभव है। कहीं कहीं इस कविता में राम के माध्यम से निराला की राष्ट्रीय गुलामी से मुक्ति की चिंता झलक मारती है। इस नए अर्थ की प्रतिष्ठा की ओर कुछ लोगों ने संकेत भी किया है। इसकी कुछ झील और दूरवर्ती झनकार कविता में विद्यमान है। यद्यपि इस अर्थ को पूरी कविता में बहुत सावधानी से पिरोया नहीं गया है, एक स्थूल ढंग से राम की विजय और सीता की मुक्ति की चिंता को हम राष्ट्र मुक्ति और मर्यादा की रक्षा के लिए युद्ध में नियोजित होने के नैतिक पक्ष को कविता में से खींच सकते हैं। यह राष्ट्रीय मुक्ति किसी महान वीर पुरुष के हाथों ही संभव है, जो मुक्ति की बलिवेदी पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने के लिए तैयार हो। निराला इसके लिए शक्ति की आराधना का पक्ष लेते हैं। पृष्ठ संख्या 123। ध्यान देने योग्य है कि यह सुझाव जनसाधारण के माध्यम से राम तक नहीं पहुंचता, बल्कि उनके वरिष्ठ मंत्री और सैनिक अधिकारी जामवंत इसकी सलाह देते हैं। क्या इसे नरेश मेहता के शब्दों में शांति युद्ध के सत्य की एक चेष्टा है नहीं माना जा सकता, या युद्ध ही युद्ध का उत्तर के रूप में क्या नहीं देखा जा सकता? यह अवश्य है कि इस संपूर्ण युद्ध की तैयारी के पीछे राम की ओर से एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, लेकिन शक्ति की आराधना यह वाक्य खंड ही सैनिक पक्ष को सतत दृढ़ किए जाने का संकेत करता है। इसका यह अर्थ हुआ कि राष्ट्रीय मुक्ति के लिए निराला गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। मनुष्य मात्र में हृदय होता है और किसी भी समय उसका चरित्र परिवर्तन हो सकता है, इसमें निराला का विश्वास नहीं है। शक्ति की आराधना से ही राष्ट्रीय मुक्ति संभव है, इसीलिए यहाँ शक्ति की मौलिक परिकल्पना का प्रश्न उठाया गया है। गांधीवादी सिद्धांतों में निराला का यह अविश्वास और भी दूसरी कविताओं में प्रकांतर से प्रकट हुआ है। महंगू महंगा रहा कविता में गांधी जी के पट्ट शिष्य और उत्तराधिकारी श्री जवाहरलाल नेहरू और उनके लघुओं भगुओं पर महंगू विश्वास नहीं करता। उसे मालूम है कि और भी दूसरे लोग हैं जो प्रकाश में नहीं हैं। पूंजीपतियों के अखबार उनके बारे में खबरें नहीं छापते, लेकिन वह फिर भी समय पर प्रकट होंगे और इस धरती को मुक्त करेंगे। एक उड़ी खबर सुनी है, हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, मगर चूंकि अभी ढीला पोली है देश में, अखबार व्यापारियों की ही संपत्ति है, राजनीति कड़ी से भी कड़ी चल रही है, वह सब जन मौन है इन्हें देखते हुए। जब ये कुछ उठेंगे और बड़े त्याग के निमित्त कमर बांधेंगे, आएंगे वह जन भी देश के धरातल पर। वह जन कौन है जो अभी भूमिगत हैं? निश्चय ही वह गांधी जी के चेले चपाटे तो नहीं हो सकते। वह काई और लोग जो शत्रु को समर जीत पछाड़ने में यकीन रखते होंगे। शक्ति की आराधना की धारणा ही गांधीवादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। शक्ति की मौलिक परिकल्पना की बात भी अहिंसा की शक्ति परिकल्पना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी व्यूह रचना जो शत्रु को इस तरह मात दे सके जिसकी उसे कल्पना भी ना हो। यह सीधी सादी सैनिक स्ट्रेटेजी की बात है। अपराजेय शक्ति को निशंक अपनाने और धारण करने का संकेत है। पृष्ठ संख्या 124। राष्ट्रीय मुक्ति की समस्या वाले इस नए अर्थ प्रकाश का उद्भास पहली बार इन पंक्तियों में लगता है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। इसमें संशय सीता की मुक्ति के लिए उतना नहीं व्यक्त है जितना संपूर्ण राष्ट्र में रावण की विजय से उत्पन्न होने वाले दुर्दमनीय अत्याचारों की चिंता व्यक्त है। मैंने कहा कि इस अर्थ की क्षीण अनुगूंज ही पूरी कविता में मिलती है, क्योंकि इस प्रसंग को तुलसीदास की धर्म की हानि या आसुरी शक्तियों के प्रसार के संदर्भ से बहुत अलग करके नहीं देखा जा सकता। पूरी कविता में प्रतीकार्थ बहुत सचेत और सघन ढंग से नियोजित नहीं है। उसमें शब्द बंध की उठान आड़े आती है और इस प्रतीकार्थ को जगह जगह बाधित करती है। शब्द बंध के लख लखाते प्रवाह की मस्ती में निराला इस अर्थ को कविता में आदि से अंत तक संगुम्फित करने में चूक गए हैं। जैसे हनुमान का प्रसंग ठीक ढंग से प्रतीकार्थ में जुड़ता नहीं लगता। वह उत्तेजित बल प्रदर्शक का उदाहरण अधिक लगता है। कुछ कुछ परंपरित पाठक को चमत्कृत करने वाला, उनके प्रदर्शन से विजय की संभावना कम और प्रलय की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें रोका जाता है, क्योंकि राम सिर्फ मर्यादित विजय चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, सर्वग्रासी विनाश नहीं। इसीलिए शायद इतने बड़े योद्धा के रहते हुए भी इस उच्च श्रृंखल विनाश की जगह निराला को शक्ति की मौलिक परिकल्पना की बात करनी पड़ी, कुछ इस तरह की जिससे कमतम विनाश में मुक्ति को लाया जा सके। हनुमान के प्रसंग को इसी रूप में थोड़ा बहुत इस नए अर्थ से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस अर्थ का प्रकाश कितने भी लो वोल्टेज पर क्यों न हो, यह उसे इतिवृत्ति से अलग करके नूतन और महत्वपूर्ण बनाकर उद्भासित तो करता ही है। निराला को राम की विजय में अंततः पूरी आस्था है, क्योंकि वह नवीन पुरुषोत्तम है। इसी को और आगे बढ़ाते हुए नरेश मेहता ने उन्हें प्रज्ञा पुरुष कहा है। वह शक्ति की मौलिक परिकल्पना कर सकते हैं, वह भावुक बल प्रदर्शन और सर्वग्राही विनाश के पक्षपाती नहीं है। बावजूद अपने सारे संशय, खिन्नता और उदासी के, वह अपनी अंतिम विजय में आस्था कभी नहीं खोते। इस तरह भारतीय प्रार्थना में जिस भारत जय विजय करे की आकांक्षा उन्होंने प्रकट की थी, वह यहाँ आकर पूरी होती है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। पृष्ठ संख्या 125। कथा के इस नए अर्थ के विकास में राम के संशय का बहुत महत्व है। यह संशय ही उन्हें एक नए चरित्र के रूप में प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि तुलसी के राम के मन में कहीं कोई संशय नहीं है। उनका विरह, विलाप और उनकी विजय की चिंता सभी मात्र लीलाएं हैं, जिन्हें राम अपने चरित्र को जनसाधारण में विश्वस्त बनाए रखने के लिए करते हैं। इसीलिए वे मनुष्य पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं, जिससे उनकी क्रियाएं लोक आस्था को फिर से प्रतिष्ठित करें, और वह भी बिल्कुल साधारण जन की शैली में। अवतार की आवश्यकता और महत्व इसी में निहित है, अन्यथा सर्व अंतर्यामी भगवान जैसे चाहे रावण का विनाश कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से लोक मन के लिए वह एक चमत्कार लगता, एक दैवी कारनामा लगता, जिसे सिर्फ देवता ही कर सकता था। तुलसी इसीलिए महान जन कवि की भूमिका में उतरते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि चमत्कारों से जनता में एक परोक्ष खौफ भी जन्म लेता है। जनता की आस्था टूटती भी है, उसे अपने पर से विश्वास उठता भी है। वह यह भी समझ सकती है कि किसी दुष्कृति अत्याचारी का विनाश उसके बूते की बात नहीं, उसके लिए उसे ईश्वर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तुलसी राम के सारे कार्यों को जनसाधारण की शैली में संपन्न करते हैं, जिससे साधारण जन का आत्मबल कायम रहे और वह विश्वास पा सके कि इस रूप में दुष्टों का विनाश वह भी कर सकता है, जिससे यह शैली अपनाकर वह भी अत्याचार और दमन के विरुद्ध संघर्ष कर सकने का नैतिक और मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त कर सके। इसीलिए तुलसी ने कहा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। तुलसीदास के राम में संशय तो क्या होता, उनकी कथा का ज्ञान भी संशय को नष्ट करने वाला है। आत्मबल, विश्वास और जन आस्था को लौटाने और प्रतिष्ठित करने वाला है। संशय रहितता की इस भूमि से ही निराला राम को संशय की मना स्थिति में पहली बार उपस्थित करते हैं। उनके चरित्र का यह संशय ही उन्हें नई मानवीय भूमि पर लाता है। यहाँ तुलसी के राम की तरह जानते बूझते हुए भी उनके आंसू या उनका विलाप अथवा विरह लोक मन में स्वाभाविकता पैदा करने वाली एक लीला मात्र नहीं है, वह संशय राम के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक अंग है। इसी संशय के द्वारा वह जनसाधारण के लीला में भगवान न बनकर एक नवीन पुरुषोत्तम की भूमिका ग्रहण करते हैं और मनुष्य मात्र की तरह राष्ट्रीय मुक्ति की चिंता में समर्पित होते हैं। अतः उनको मनुष्य की भूमि पर उतारने वाला नया तत्व यह संशय ही है। संशय मात्र को दूर भगाने वाले राम के चरित्र में व्यक्तिगत रूप से संशय का प्रवेश तुलसी की राम कथा को तोड़कर उसमें एक नया सामाजिक, ऐतिहासिक और पृष्ठ संख्या 126 समसामयिक अर्थ प्रतिष्ठित करता है। इसी धरातल पर आकर निराला इस कथा को नित नूतन करते हैं और इसी भूमिका पर इस कविता का महत्व स्थापित किया जा सकता है, ना कि उसे वीर रस और ओजस्वी शिल्प का रामचरित मानकर। यदि विश्वंभर मानव ने यह अर्थ समझा होता तो वह इसे कृतिवास रामायण का पुनर्लेखन ना बताते। राम की शक्ति पूजा में राम जिस संशय के शिकार होते हैं उसका धरातल समसामयिक और राष्ट्रीय है। जनजीवन में रावण की विजय का एहसास उन्हें शंकित करता है, लेकिन यह संशय वैयक्तिक अंधता अथवा रीति शोधन के फेर में नहीं पड़ता। नरेश मेहता की लंबी कविता संशय की एक रात में राम का संशय उन्हें यह जानने के लिए बाध्य करता है कि उनका संशय वैयक्तिक अंधता है या सत्य का पुनर्शोधन। राम की शक्ति पूजा में संशय अयन लड़ाई के मैदान में पराजय की आशंका का प्रतिफल है, लेकिन संशय की एक रात में राम के मन में संपूर्ण युद्ध की उपयोगिता को लेकर ही संशय उत्पन्न होता है। राम की शक्ति पूजा के विपरीत नरेश की कविता में संशय सेतु बंध के अवसर पर ही नियोजित किया गया है। निराला द्वारा नियोजित नया अर्थ राष्ट्रीय मुक्ति की समस्या को लेकर है, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसी भी कवि या रचनाकार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इसके विपरीत संशय की एक रात आज़ादी के बाद की रचना है, उसमें राम के मन का संशय राष्ट्रीय मुक्ति का ना होकर युद्ध और शांति के व्यापक प्रश्नों को लेकर उत्पन्न हुआ है। इस तरह नरेश मेहता ने राम के चरित्र की उद्भावना फिर एक नए व्यापक धरातल पर करने की कोशिश की है। उनकी चिंता समसामयिक और राष्ट्रीय से भी आगे बढ़कर संपूर्ण व्यापक मानवता की चिंता है। वह रावण से अपनी पराजय की चिंता को लेकर शंकित नहीं है, वह भयंकर अनिर्णय के शिकार हैं। वह सीता हरण को भी अपनी व्यक्तिगत समस्या समझते हैं और उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र और जनसाधारण को युद्ध की आग में झोंक देना उचित नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सत्य के जिस उद्घोष को सिद्धांत बनाकर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं या लड़ी जाती रही हैं, उन सारे सिद्धांतों के अंतःपुर में व्यक्तिगत स्वार्थ का षड्यंत्र ही रहता है। तुलसी के राम की तरह वह दुष्टों के विनाश के लिए वन गमन की बात अपने मन में जानते नहीं। वह उस तरह के अंतर्यामी नहीं हैं। वह राज परिवार के षड्यंत्रों से मुक्त होकर वन में 14 वर्षों तक शांतिपूर्वक एक तपस्वी का जीवन बिताने की बात सोचकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि वन भी निष्कंटक और निर्विरोध नहीं है, वह शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। अगर यहाँ से राम के अतीत चरित्र पर नज़र डालें तो हमें अंतर साफ नज़र आता है। तुलसी के राम अपने वन जाने का उद्देश्य जानते हैं, नरेश मेहता के राम पृष्ठ संख्या 127 उसे शांति स्थल समझ कर जाते हैं। तुलसी के राम को मालूम है कि दक्षिणापथ के वन में रहने वाले ऋषियों से रक्त कर वसूल किया जाता रहा है और उन्हें वहां जाकर तपस्वी बनकर शांति से बैठना नहीं है बल्कि संघर्ष के लिए उपस्थित होना है। इसीलिए उनमें अनिर्णयात्मकता, संदेह या एकाएक वन में निरापद ना पाकर धक्का लगने या ठगे जाने या उद्विग्न होने की मना स्थिति पैदा नहीं होती। पूर्व निश्चितता की इसी स्थिति की जानकारी के कारण अपने सर्व अंतर्यामी मन के कारण तुलसी के राम अपने को कुल के विनाश का परिताप, पिता की मृत्यु, भरत के स्वयं निर्णित निर्वासन या उर्मिला के दुख के लिए उत्तरदायी नहीं मानते। यह तो नर रूप लेने पर लीला का एक अंग है। इस नजरिए से संशय की एक रात में राम घोर व्यक्तिवादी और नितांत साधारण मानव लगते हैं। सिर्फ उनकी नैतिक दृष्टि पकी हुई और साफ है, लेकिन इसके अनुकूल भी वह आचरण नहीं कर पाते। वह अपने वैयक्तिक स्वार्थों के लिए जन विनाश का निमित्त नहीं बनना चाहते। यहाँ तक कि मानो रक्त पर पग धर आती सीता की प्राप्ति भी वह नहीं चाहते, क्योंकि वह जानते हैं कि चाहे जिस सिद्धांत या नैतिक अवधारणा की उद्घोषणा क्यों न की जाए, सारे युद्धों के पीछे कुछ लोगों या किसी एक व्यक्ति की सत्ता, अंधता का स्वार्थ छिपा रहता है। राम युद्ध के इस सत्य को जानते हैं, इसीलिए वह युद्ध से प्राप्त कोई साम्राज्य, कोई भी ऐश्वर्य नहीं चाहते। व्यक्तिगतता की सार्वजनिकता के लिए यह निराकृति ही युद्ध की गहरी अंदरूनी वास्तविकता की पहचान ही उन्हें एक प्रज्ञा पुरुष बनाती है। लेकिन उनकी इस प्रज्ञा पुरुषता को उनके मन का वैयक्तिक अंधकार धुंधला और आच्छन्न कर देता है। यहाँ पर आकर युद्ध के प्रति उनकी खिन्नता गीता में अर्जुन की खिन्नता के निकट लगने लगती है, लेकिन अर्जुन की विरक्ति से राम की विरक्ति अधिक नैतिक और इसीलिए अधिक अविश्वसनीय भी लगती है। अर्जुन युद्ध भूमि में विरोध पक्ष में लड़ने के लिए प्रस्तुत अपने परिजनों, भाइयों, गुरुओं और संबंधियों को देखकर खिन्न होते हैं। यहाँ राम के विरुद्ध उनके संबंधी या गुरु हथियार बांधे नहीं खड़े हैं, लेकिन उन्हें जन के विनाश की चिंता है। वे उसके लिए सीता का भी परित्याग करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। यहीं आकर राम का यह निर्णय उनकी खिन्नता अविश्वसनीय और अयथार्थ तथा ओढ़ी हुई लगने लगती है। वह धनुष बाण और खड़ग से जीता हुआ साम्राज्य नहीं चाहते। इसका इशारा किस तरफ है? क्या नरेश मेहता यह समझते हैं कि साम्राज्य गांधी जी की पदयात्रा से बनते हैं? इस नुक्ते पर आकर राम की शक्ति पूजा के राम और संशय की एक रात के एक दो विरोधी बिंदुओं पर खड़े दिखते हैं। दूसरा युद्ध की व्यर्थता को जानकर खिन्न है, तो पहला उसे जीतने के लिए शक्ति की मौलिक परिकल्पना और आराधना में जुटा हुआ है। संशय की एक रात में राम किसी भी सिद्धांत की आड़ लेकर कितने पृष्ठ संख्या 128 भी बड़े आदर्श के लिए युद्धोन्मुखता को आस्था की वंचना कहते हैं। इसीलिए वह शांति को भी युद्ध के सत्य की एक चेष्टा कहकर परिभाषित करते हैं। इस सारी ऊहापोह भरी मना स्थिति से कहीं ना कहीं यह सच लगता है कि राम अपने सोच और शंका में एक वैयक्तिक अंधता में फंस गए हैं। एक ओर वह अपने व्यक्तिगत विघटन को लेकर पश्चाताप ग्रस्त हैं, दूसरी ओर प्रज्ञा पुरुषवत युद्ध का अंतिम रहस्य, उसका सत्य भी जानते हैं। साधारण मनुष्य और प्रज्ञा पुरुष का यह घालमेल ही राम को संशय को लेकर कभी वैयक्तिक अंधता और कभी रित का विश्लेषण समझने के लिए विवश करता है। फिर उनका निर्णय भी स्वचालित नहीं है। अपने निर्णयों में वह युद्ध मात्र को एक अपराध मानते हैं, लेकिन विवशता में वह दूसरों का निर्णय ढोते हैं और युद्ध की व्यर्थता से परिचित होते हुए भी उसमें नियोजित होते हैं। इस पूरे प्रसंग में निमित्त मात्र भव सब्यसाची की छाया है। कुल मिलाकर यह कविता गीता के प्रवचन का कुछ घालमेल बनकर रह जाती है। गीता में कृष्ण अर्जुन का संशय दूर करके उन्हें युद्ध के लिए प्रस्तुत करते हैं। यहाँ दशरथ और जटायु की आत्माएं तथा विभीषण के प्रवचन। आश्चर्य है कि राम जैसा प्रज्ञा पुरुष इनके द्वारा थोपे गए निर्णयों को स्वीकार कर लेता है। इसके पक्ष में सिर्फ यही तर्क रह जाता है कि जैसे राम व्यापक जन समाज को युद्ध में झोंक कर अपना वैयक्तिक स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहते, उसी तरह जन समाज के समर्थन पर युद्ध के लिए प्रस्तुत भी हो जाते हैं। प्रज्ञा पुरुष राम अपने व्यक्तिगत निर्णय को सामाजिक निर्णय के बलिवेदी पर चढ़ा देते हैं। क्या यह भी एक तर्क और सिद्धांत की आड़ लेकर आस्था की वंचना नहीं है? और राम जब इतनी दूर तक इस सत्य को समझते हैं, तो जानबूझकर यह जिंदा मक्खी क्यों निगलते हैं? क्यों वह फिर सब कुछ लीला भाव से ग्रहण करते हैं? एक धनुष बाण खड़ग और शिरस्त्राण, मुझे ऐसी जय नहीं चाहिए। बाण विद्ध पाखी सा विवश साम्राज्य नहीं चाहिए। मानव के रक्त पर पग धर कर आती सीता भी नहीं चाहिए। दो सत्य की मिथ्या पताकाएं लिए अपने स्वार्थ के दे खड़ग जल के हाथ में जो भी लड़ेगा युद्ध होगी आस्था की वंचना ही। पृष्ठ संख्या 129। तीन जब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं। यह क्या अपने स्वार्थों के लिए जनता के हाथों में खड़ग देना नहीं हुआ? अगर रामलीला पुरुष अवतार नहीं है, तो फिर यह निमित्त भाव, यह जानबूझकर दूसरों के निर्णय का वहन उनके व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है। सच यह है कि यह कविता गीता के विचारों का फेन है। युद्ध और शांति की मानवीय समस्या पर कोई नई मौलिक परिकल्पना से उद्भूत नहीं है, बल्कि गीता के कृष्ण के विचारों की प्रतिध्वनि से आक्रांत है। राम में व्यक्तिगत निश्चयता का सर्वथा अभाव झलकता है। उनकी धीर गंभीरता भी नैराश्य, पराजय और पश्चाताप से आक्रांत है। नरेश मेहता को भी राम के चरित्र की इस कमजोरी का कहीं ना कहीं आभास है। उन्हें लगता है कि व्यक्ति के भीतर एक अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो गया है। वह एक ही साथ दोहरे सत्यों, दोहरे संकल्पों के शिकार हैं। यही अनिर्णयात्मकता का चरम है। वह चुनाव करने में अक्षम है और अंततः दूसरे का निर्णय चुपचाप वहन कर लेते हैं। अंततः वह गीता की इसी मनोभीमि पर उतरते हैं कि एकमात्र कर्म ही सारे संशयों का उत्तर है। एक कर्म ही उत्तर है, यश जिसकी छाया है। दो दो सत्य, दो संकल्प, दो दो आस्थाएं, व्यक्ति में ही अप्रमाणित व्यक्ति पैदा हो गया है। दरअसल नरेश मेहता इस कविता की रचना के दौरान स्वयं ही संशयग्रस्त हैं। उनके अंदर राम के चरित्र को लेकर स्वयं कोई निर्णय नहीं है, वह दिग्भ्रम में हैं। उनके दिमाग में उनका वैष्णव संस्कारी विनम्र मन और गीता के प्रवचन के छायाभास चक्र काट रहे हैं। वह उनसे ग्रस्त हैं और अंततः मुक्त नहीं हो पाए हैं। पूरी कविता उनके इसी रचनात्मक संभ्रम की उपज है। इसीलिए ऊपर से बड़े बड़े प्रश्नों और समस्याओं से लैस होने के बावजूद संशय की एक रात की गहरी छानबीन में उतरने पर लगता है कि यह राम के चरित्र को किसी नूतन अर्थ की संभावना से प्रकाशित नहीं कर पाती। उसमें गीता के कर्म दर्शन का कुछ प्रकांतर से नियोजन है। यह कवि की अध्ययन आक्रांतता का प्रतिफल है और इसीलिए ऊपरी तौर पर यह कविता राम के चरित्र का एक नया कोण उद्घाटित करने जैसा आभास तो देती है, पर ऐसा करती नहीं। इसीलिए यह राम की शक्ति पूजा से आगे की कविता पृष्ठ संख्या 130 नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें राम की शक्ति पूजा के संक्षिप्ति और शिल्प सुघड़ता का अभाव है। इसमें भावुक और व्यर्थ का पंक्ति प्रक्षेप हुआ है। पूरी कविता इसकी आधी हो तो शायद भाषिक संगठन कुछ सघन हो सके। इस तरह विषय वस्तु, शिल्प संगठन और भाषिक संरचना सभी स्तरों पर कुल मिलाकर संशय की एक रात एक कमजोर रचना है और कवि के रचनात्मक अनिर्णय का परिणाम है, और यह निश्चयपूर्ण कहा जा सकता है कि अपने राष्ट्रीय मुक्ति के नए अर्थ की क्षीण अनुगूंज के बावजूद राम की शक्ति पूजा में कोई रचनात्मक संभ्रम नहीं है। उसमें से वह अर्थ साफ साफ झलक मारता है और राम के चरित्र को नूतन और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखने में सफल हुआ है। इसीलिए राम के चरित्र को लेकर इससे आगे उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। संशय की एक रात उसमें कुछ भी जोड़ती नहीं, बल्कि प्रकांतर से यह कृष्ण के प्रवचनों के इतिवृत्ति का पृष्ठ पेषण ही करती है। लेकिन जैसा कि इस निबंध के शुरू में ही मैंने यह प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की है कि निराला की इन लंबी कविताओं में भी आत्म साक्षात्कार ही प्रमुख है, ये कविताएं भी मुख्यतः आत्मचरितात्मक ही हैं। राम की शक्ति पूजा के साथ भी यही बात है। राष्ट्रीय मुक्ति के ऐतिहासिक समसामयिक अर्थ की प्रतिष्ठा से भी अधिक सघन और महत्वपूर्ण अर्थ राम के चरित्र के माध्यम से कवि की अपनी ही अखंड रचनात्मक विजय की पहचान है। यही आत्म साक्षात्कार का संघटित अर्थ इस कविता को सर्वथा एक नए और अंशीय धरातल पर ला खड़ा करता है। यद्यपि जैसा कि मैंने कहीं कहा है, इस अर्थ का संगुपन इतना सूक्ष्म है कि उसे आसानी से पकड़ना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब इस प्रतीकार्थ को क्रमवार ध्यान में रखकर इस कविता को पढ़ें तो धीरे धीरे यह अर्थ रस टपकने लगता है। दरअसल मुझे बार बार लगता है कि निराला ने राम के संशय, उनकी खिन्नता, उनके संघर्ष और अंततः उनके द्वारा शक्ति की मौलिक कल्पना और साधना तथा अंतिम विजय में अपने ही रचनात्मक जीवन और व्यक्तिगतता के संशय, अपनी रचनाओं के निरंतर विरोध से उत्पन्न आंतरिक खिन्नता, फिर अपने संघर्ष, अपनी प्रतिभा को अभ्यास, अध्ययन और कल्पना ऊर्जा द्वारा एक नई शक्ति के रूप में उपलब्ध और प्रदर्शित करके अंततः रचनात्मकता की विजय का घोष इस कविता में व्यक्त किया है। वही स्वयं पुरुषोत्तम नवीन है। नए काव्य नई रचनात्मकता, नए काव्य नई रचनात्मकता के सर्वप्रथम और श्रेष्ठतम उद्भावक वही हैं जो शेष है उनमें से बहुत से छद्म हैं, और अपने छद्म को ही रावण की तरह से शक्ति या प्रतिभा प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। वह निराला की पुरुषोत्तमता, उनकी एकांत नवीन मौलिकता को उद्धृत बल विस्तार और सामयिक महोल्लास से बेध कर पराभूत कर देना चाहते हैं। फिलहाल उनका पक्ष प्रबल दिखाई देता है। उन्होंने अपनी छद्म रचना के पृष्ठ संख्या 131 अट्टहासों से कवि की एकांत ऊर्जा और प्रतिभा के मंत्रपूत शरों को निरस्त कर रखा है। इससे खिन्नता, संशय और भावावेग स्वाभाविक है। अपनी इसी खिन्न मना स्थिति का सघन बिंबचित्र निराला राम के रूप वर्णन में करते हैं। अनिमेष राम विश्वजिद दिव्य सरभंग भाव विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव स्थल धनु गुण है कटिबंध श्रस्त तुड़ीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। यह छवि सिर्फ राम की ही नहीं है, कवि की भी है, जिन्होंने कवि को दारागंज वाले मकान के कमरे बैठे हुए बाहर गली की तरफ शून्य में एकटक अपने आयत नेत्रों से घूरते हुए एक बार भी देखा है। वे इस अनिमेष राम की छवि और उसकी चिंता को समझ सकते हैं। उसका सारा मन छत बिछत है, मुट्ठियाँ गुस्से से कसी हुई हैं, मन का घाव रिस रहा है, अंदर लगातार खून बह रहा है। शुद्ध लाल लाल पवित्र मौलिक रचनात्मक ऊर्जा का खून जिस पर लगातार वर्षों से प्रहार होता रहा है। कवि के मन मस्तिष्क पर ही नहीं, उसके सिंहवत शरीर पर भी प्रहार की यह छाप विद्यमान है। कटिबंध ढीला हो गया है, लंबे केश बाहों कंधों पर फैले हुए हैं, कब की पर्वत की तरह ऊंची प्रतिभा क्षमता, उसका दृढ़ कभी ना हारने वाला शिखर मन, जैसे इस अंधकार में, इस सामयिक और क्षणिक नैराश्य में पत्थर की तरह जड़ हो गया है। लेकिन यह अवसाद ग्रस्त, उदास, मानसिक, शारीरिक सौंदर्य का धुंधलापन, उसकी अच्छन्नता क्षणिक है। अभी भी कवि की तेजस्वी रचनात्मक क्षमता के नेत्र टिमक रहे हैं, उसकी दूरदर्शिता बरकरार है, जैसे अंधेरे पर्वत प्रदेश से दूर कहीं सितारे चमक रहे हों।